जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। जनसांख्यिकीय संक्रमण का बार बार जिक्र हुआ है, जिसे वर्तमान जनसांख्यिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे अभिलेखपूर्ण घटना कहा जाता है। यह जनसांख्यिकीय तथ्य संकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार मनुष्य जनसांख्यिकी प्रलय का पूर्व अनुमान कर सकता है। प्रकृति उस पर प्रलय थोपे इसके पूर्व ही वह उससे बचने का यथोचित प्रबंध कर सकता है। जनसांख्यिकीय सांतत्य संकल्पना इस बात पर जोर डालती है कि मनुष्य बहुत लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल तथा हर जगह रह सकने वाला प्राणी है। यह इस योग्य है कि अपनी उत्पादकता को उस समय कम कर सके जब मृत्यु दर में ह्रास से जनसंख्या वृद्धि वातावरण की पोषण क्षमता को पार कर जाती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना विश्व के अधिक विकसित देशों में 18वीं शताब्दी से चली आ रही मर्त्यता, उत्पादकता तथा स्वाभाविक बढ़ोतरी की प्रवृत्तियों पर आधारित है। त्रिवार्थक के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण विभिन्न प्रकार के जनसंख्या के आंकड़ों को एक समायोजित तथा सुगठित तरीके से व्यवस्थित करता है, ताकि परिवर्तन की क्षेत्रीय प्रक्रियाओं तथा समय के पहलुओं को भलीभांति समन्वित किया जा सके। जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना का मूल रूप से प्रतिपादन थॉमसन तथा नोटस्टीन द्वारा किया गया था। उन्होंने यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनुभावित जन्मता तथा मर्त्यता की प्रवृत्तियों को अपने कथनों का आधार माना। इस संकल्पना के तीन स्पष्ट भाग हैं। पहला वर्णन, डिस्क्रिप्टिव, दूसरा संकल्पना, थ्योरेटिकल तथा तीसरा पूर्व घोषणा, प्रिडक्टिव। प्रथम भाग में समय के अनुसार मर्त्यता तथा उत्पादकता की प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग में वर्णित प्रतिरूप एवं प्रवृत्ति के कारण कार्य का निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह भाग पूर्णतः सैद्धांतिक था। तृतीय तथा अंतिम भाग में भविष्य के विषय में पूर्व घोषणा की गई है। सामान्य भाषा में यह कहा जा सकता है कि संकल्पना जनसांख्यिकी परिवर्तन के विषय में विशिष्ट प्रतिरूप का प्रदर्शन करती है, जिसमें एक समाज विकास के साथ साथ उच्च उत्पादकता तथा उच्च मर्त्यता से निम्न उत्पादकता तथा निम्न मर्त्यता में तथा साधारणतया ग्रामीण कृषि तथा अशिक्षित समाज से मुख्यतः नगरीय औद्योगिक तथा शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। इस संकल्पना के तीन विशिष्ट अवधारणाएं हैं जो इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। पहला, मर्त्यता में ह्रास उत्पादकता में ह्रास से पहले शुरू होता है। दूसरा, फिर धीरे धीरे उत्पादकता में भी मर्त्यता के अनुरूप ह्रास शुरू होता है। तीसरा, अंततः जनसांख्यिकीय संक्रमण के साथ ही समाज का सामाजिक तथा आर्थिक रूपांतरण होता है। हालांकि इस संपूर्ण अवधि में सभी समाज की मध्यम अवस्था का अनुभव करते हैं, जब मर्त्यता तथा उत्पादकता में अंतर विशाल होता है, जिससे न केवल जनसंख्या में बहुत परिवर्तन होती है अपितु जनसांख्यिकी संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आज विश्व में विभिन्न देश जनसांख्यिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। त्रिवार्था के अनुसार मुख्यतः मनुष्य के द्वैतपरक स्वभाव के कारण ही ऐसा है। उसके अनुसार जैविक दृष्टि से मनुष्य हर स्थान पर एक जैसा ही है तथा प्रजनन क्रिया में रत है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से मनुष्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर है। इस सांस्कृतिक विभेदन के कारण ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता दर में भी भिन्नता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्र जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अतः क्योंकि सामाजिक आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय संक्रमण क्रिया साथ साथ चलती है, इसलिए विश्व के विभिन्न देशों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में भिन्न भिन्न समयावधि लगेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक रूपांतरण की गति कैसी है। इस प्रकार आज के विश्व में जो देश विकास के निम्न स्तर पर हैं, वे भी उन दवाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रौद्योगिकी विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय देशों द्वारा विकसित की गई है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि एक देश में जनसांख्यिकी रूपांतरण वहां के प्रौद्योगिकी विकास के अनुरूप ही हो। जनसांख्यिकी संक्रमण संकल्पना के कई विशिष्ट चरण हैं। नोटस्टीन ने संक्रमण में तीन अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया है। ये तीन अवस्थाएं हैं। पहला, उत्पादकता के ह्रास में पहले उच्च जनसंख्या परिवर्तन संभाव्य होती है। दूसरा, संक्रमण परिवर्तन की अवस्था में जब उत्पादकता में ह्रास अच्छे से आरंभ हो जाता है तो जनसंख्या परिवर्तन में कमी शुरू हो जाती है। तीसरा, जब उत्पादकता दर पुनः स्थापन स्तर से नीचे पहुंच जाती है तथा जब मृत्यु दर निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है, तब जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगती है। थॉमसन तथा नोटस्टीन की मूल जनसंख्यिकी संक्रमण संकल्पना में समय के साथ साथ सुधार हुआ। जनसांख्यिकी संक्रमण पर उपलब्ध विशाल साहित्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संक्रमण की 3 से 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। सामान्य तौर पर 3 अवस्थाओं वाले मॉडल को माना जाता है, जिनकी 3 अवस्थाएं हैं। पहला, औद्योगिकरण से पूर्व की अवस्था। दूसरा, पश्चिमीकरण की आरंभिक अवस्था। तीसरा, पश्चिमीकरण की अंतिम अवस्था। इन्हें विस्तार में इस प्रकार भी कहा जा सकता है। पहला, उच्च अस्थायी अवस्था, जिससे उत्पादकता तथा मर्त्यता उच्च है तथा प्राकृतिक परिवर्तन बहुत कम है। दूसरा, विस्फोटक अवस्था, जिसमें उत्पादकता उच्च है तथा मर्त्यता में ह्रास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में विस्फोटक परिवर्तन होती है। तीसरा, निम्न अस्थायी अवस्था, जिससे उत्पादकता तथा मर्त्यता निम्न है तथा जनसंख्या अवरुद्ध हो जाती है, अतः जनसंख्या में फिर से अस्थायित्व सा आ जाता है। इस प्रकार से चक्र संपूर्ण हो जाता है। प्रथम अवस्था में उत्पादकता 35 प्रति हजार से अधिक है तथा लगभग स्थिर है। मृत्यु दर भी ह्रास अवस्था में उच्च होती है, 35 प्रति हजार से अधिक, परंतु यह अनियमित है क्योंकि बीमारियों तथा असमान भोजन पूर्ति के कारण सब एक जैसा नहीं है। इस प्रकार इस अवस्था में यद्यपि लोग प्रजनन क्रिया में रत हैं, तथापि जनसंख्या स्थिर तथा धीरे धीरे बढ़ती है। यह अवस्था कृषि समाजों में होती है, जहां घनत्व कम या मध्यम है, सामान्य उत्पादकता का स्तर निम्न है, बड़े परिवार को पूंजी समझा जाता है, जीवन संभाव्यता निम्न है, गैर कृषि खंड का विकास प्राथमिक अवस्था में है, अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, प्रौद्योगिकी विकास कम तथा नगरी विकास भी सीमित है। लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण की इस अवस्था में थे। यह कहना कठिन है कि आज भी विश्व का कोई देश जनसांख्यिकी संक्रमण की इस प्रारंभिक अवस्था में है या नहीं, क्योंकि इन क्षेत्रों के उत्पादकता तथा मर्त्यता के आंकड़े या तो कम हैं या फिर पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हैं। साथ ही आधुनिक तकनीकी के तीव्र प्रसार के कारण, विशेषकर दवाइयों के क्षेत्र में, विश्व का कोई भी राष्ट्र मृत्यु दर के ह्रास से अछूता नहीं रह गया। इस संदर्भ में प्रथम अवस्था को पूर्ण औद्योगिक या पूर्व आधुनिक अवस्था अवस्था कहा जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में भी उत्पादकता दर उच्च गति 30 प्रति हजार होती है, लेकिन इसमें धीरे धीरे ह्रास आता है तथा मृत्यु दर में तीव्र ह्रास आता है और वह 15 प्रति हजार के आसपास होती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण की इस विस्फोटक अवस्था में जहां एक ओर स्वच्छता और तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होता है, उत्पादकता व वितरण का सामान्य ढांचा मृत्यु दर में तीव्र ह्रास का कारण बनता है, वहां दूसरी ओर उत्पादकता उच्च स्तर पर रहती है। ऐसा कम से कम दूसरी अवस्था की आरंभिक स्थिति में अवश्य होता है। ज्यों-ज्यों द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, उत्पादकता में धीरे धीरे ह्रास होता है। इस प्रकार द्वितीय अवस्था के प्रारंभिक चरण जिसमें जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर कम हो रही थी होती है तथा द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण जिसमें उत्पादकता धीरे धीरे कम होती है व मृत्यु दर में तीव्र ह्रास होता है में अंतर है। द्वितीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि पहले तीव्र होती है पर धीरे धीरे परिवर्तन गति मंद हो जाती है। जन्म और मृत्यु के भारी अंतराल के कारण जनसंख्या का जो विस्फोट होता है उससे संसाधनों की गतिशीलता की समस्या महत्वपूर्ण बन जाती है। जीवन संभाव्यता में परिवर्तन होती है, संसाधनों की गतिशीलता के प्रयास अधिक हो जाते हैं, औद्योगिक विकास तथा नगरीय विकास की क्रियाओं में तेजी आती है, बड़े परिवारों को पूंजी की संज्ञा देना बंद हो जाता है। फलस्वरूप उत्पादकता में धीरे धीरे ह्रास होता है जो प्राकृतिक परिवर्तन दर को द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण में कम कर देती है। विश्व के अधिकांश विकसित देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक दवाइयों तथा स्वच्छता सुविधाओं के व्यापक प्रसार से मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हो रहा है तथा जन्म दर उच्च बनी हुई है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण में है, जहां जन्म दर धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, लेकिन क्योंकि मृत्यु दर में ह्रास तीव्र रहा है इसलिए जनसंख्या में विशाल परिवर्तन हुई है। हालांकि वे अभी तक द्वितीय अवस्था के बिल्कुल अंतिम चरण में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी उत्पादकता अभी तक इतनी निम्न नहीं हुई है। जनसांख्यिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। जनसंख्या या तो फिर से स्थिर होती है या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यद्यपि जनसंख्या प्रथम तथा अंतिम अवस्था में धीरे धीरे बढ़ती है, तथापि ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत अवस्थाओं का परिणाम है। जहां प्रथम अवस्था में जनसंख्या की धीमी परिवर्तन उच्च उत्पादकता तथा उच्च मर्त्यता के कारण है, वहां तृतीय तथा अंतिम अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि का कारण निम्न उत्पादकता तथा निम्न मर्त्यता है। साथ ही जबकि प्रथम अवस्था में उत्पादकता उच्च तथा स्थिर है, मर्त्यता उच्च व घटती बढ़ती रहती है। तीसरी अवस्था में विपरीत होता है, इसमें मर्त्यता निम्न व स्थिर है तथा उत्पादकता निम्न लेकिन घटती जाती है। इतना ही नहीं, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाएं जो जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम और तृतीय व अंतिम अवस्था से जुड़ी हैं, वे पूर्णतया भिन्न हैं। प्रथम अवस्था में समाज परंपरागत मुख्यतया कृषि होता है, जबकि तृतीय अवस्था में जनसंख्या उच्च स्तर नगरी होती है। तकनीकी ज्ञान भरपूर होता है। परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों का प्रयोग सामान्य बात होती है। साक्षरता व शिक्षा के स्तर उच्च होते हैं तथा श्रम विशिष्टीकरण उच्च होता है। ऐसा माना जाता है कि एंग्लो अमेरिका, यूरोप, सोवियत रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने जनसांख्यिकीय संक्रमण की इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। हाल ही में चीन ने भी लगता है कि अपनी उत्पादकता तथा मर्त्यता में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त कर ली है। इतने थोड़े से समय में यह अपनी जनसंख्या परिवर्तन दर विकसित देशों के समकक्ष लाने में सफल हुआ है। इसलिए लगता है कि आने वाले समय में जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के बारे में फिर से विचार करना आवश्यक हो जाएगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण का क्षेत्रीय प्रारूप। यद्यपि जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल की अवधारणा साधारण रूप में है, साधारण रूप में हुई, तथापि विकास के कोई ऐसे स्पष्ट स्तर नहीं थे जो नियमित उत्पादकता ह्रास की शुरुआत के लिए माने जा सके, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी देशों में हुए जनसांख्यिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया था, वहीं से इसका प्रसार आरंभ हुआ। यह कहना कठिन है कि उन सभी देशों में जहां संक्रमण का उद्भव हुआ, उच्च उत्पादकता तथा मर्त्यता से निम्न उत्पादकता तथा मर्त्यता की प्रवृत्तियों में साधारणतया समानताएं थी। वास्तव में उत्पादकता तथा मर्त्यता के प्रारूपों का सिलसिला तथा उनमें ह्रास की गति व संक्रमण चक्र की समयावधि पश्चिम में भी एक देश से दूसरे देश में भिन्न रही है। इस प्रकार यद्यपि जनसांख्यिकी संक्रमण का प्रारूप ठीक से पहचाना तो जा सकता है, तथापि यह बताना कठिन है कि किन भिन्न भिन्न सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन परिस्थितियों में इसका एक देश से दूसरे देश में प्रसार हुआ। जब इसका प्रसार एक प्रकार के विश्व से दूसरे प्रकार के विश्व में हुआ तो इसमें कुछ सुधार भी हुए। प्रथम संसार में उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका समाहित हैं। इन्होंने उत्पादकता व मर्त्यता के उन्हीं विशिष्ट प्रारूपों का अनुभव किया जैसा जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में वर्णित है। हाँ, व्यक्तिगत देशों में जनसांख्यिकी अनुभवों में कुछ अंतर अवश्य रहा है। यहाँ संक्रमण 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्ण भी हो चुका था, जबकि शेष विश्व अभी प्रथम अवस्था में ही था। प्रथम विश्व के बारे में यह आमतौर पर कहा जाता है कि उत्पादकता के स्तर विश्व के अन्य भागों जितने उच्च कभी नहीं थे। यहाँ जनसांख्यिकीय रूपांतरण सामाजिक आर्थिक रूपांतर तथा प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा हुआ था। द्वितीय विश्व, जिसमें मुख्यतः पूर्वी यूरोप है, संक्रमण काल का आरंभ 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया ने सर्वप्रथम प्रथम अवस्था से आगे कदम बढ़ाए। यह रुचिकर है कि द्वितीय विश्व के देशों ने कभी भी जनसंख्या की उस विस्फोटक परिवर्तन का सामना नहीं किया जिस विस्फोटक परिवर्तन का जिक्र मूल संक्रमण मॉडल में किया गया है। 1940 तक द्वितीय विश्व के अधिकांश देशों जैसे ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड तथा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी यूरोप के देशों ने संक्रमण की तीसरी अवस्था को पार कर लिया था। इन सभी देशों ने मध्यम जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया, क्योंकि उत्पादकता तथा मर्त्यता में ह्रास में समय बहुत कम था। जापान ने भी इस प्रारूप का अनुकरण किया तथा मध्यम परिवर्तन की द्वितीय अवस्था में 1930 ईस्वी में प्रवेश किया। सोवियत रूस इस वर्ग में 1946 ईस्वी में आया। ये दोनों देश तृतीय अवस्था में 1950 में आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसांख्यिकी प्रारूप का क्रमानुसार प्रारूप तथा समयावधि जिसका अनुभव द्वितीय विश्व ने किया वह प्रथम विश्व द्वारा किए गए प्रारूप से एकदम अलग था। अतः द्वितीय विश्व के देशों के बारे में न तो जनसंख्या विस्फोट ही हुआ और न ही संक्रमण एक शताब्दी या इससे अधिक चला। संक्रमण 30-40 वर्षों में पूर्ण हो गया था। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि चर्च तथा राज्य दोनों ही परिवार नियोजन के उपायों के प्रयोग के विपक्ष में नहीं थे। इससे उत्पादकता ह्रास की क्रिया तेज हुई। साथ ही आधुनिक दवाइयों की उपलब्धि से भी मृत्युता के तीव्र ह्रास में सहायता मिली। तृतीय विश्व, जिसमें विश्व के बाकी सभी देश हैं, का अनुभव प्रथम तथा द्वितीय विश्व के अनुभवों से बहुत भिन्न है। तृतीय विश्व के अपेक्षाकृत छोटे देश द्वितीय विस्फोटक अवस्था को अनुभव करने वाले राष्ट्र थे। सूरीनाम ने 1930 के आरंभ में द्वितीय अवस्था में प्रवेश किया। धीरे धीरे विस्फोटक द्वितीय अवस्था का प्रसार लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के छोटे देशों में भी हुआ। चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जैसे बड़े देशों ने संक्रमण की द्वितीय अवस्था में केवल 1950 में प्रवेश किया। बड़े देशों में मृत्युता ह्रास ने प्रशंसनीय निम्न स्तर तक पहुंचने में एक लंबा समय लिया। बड़े देशों में उत्पादकता नियंत्रण काफी देर से आरंभ हुआ, फलतः मृत्यु दर में तीव्र ह्रास के साथ उत्पादकता मध्यम स्तर पर नहीं थी। परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व के कई देशों में जनसांख्यिकी संक्रमण की आरंभिक अवस्था का अनुभव किया गया। फिर भी बाद की अवस्थाओं के बारे में कुछ निश्चित नहीं था। छोटे देश जिन्होंने 1930 के आरंभ में आरंभिक द्वितीय अवस्था में प्रवेश किया था वे 40 से भी अधिक वर्षों तक विस्फोटक अवस्था में रहे। तृतीय विश्व के बारे में अक्सर यह भय बना रहता है कि आयातित दवाओं व जन स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रौद्योगिकी से वहां की मृत्यु दर बहुत तीव्रता से कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उत्पादकता ह्रास के लिए अवस्थाओं की आवश्यकता थी। वे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन वहां नहीं आए। हाल ही में तृतीय विश्व के देशों के लिए चीन के अनुभव के बाद कुछ आशा बढ़ी है। मृत्युता तथा उत्पादकता के हाल के ही अनुभवित आंकड़ों से ऐसा लगता है कि चीन तृतीय अवस्था में पहुंचने वाला है। संक्रमण संकल्पना के आलोचनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि इस बृहद स्तरीय ऐतिहासिक संक्रमण संकल्पना में कुछ अनिश्चितता अवश्य है। संकल्पना की परिदृष्टि अनिवार्यता समयानुसार है, लेकिन इसका क्षेत्रीय विस्तार जनसंख्या भूगोलविदताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संकल्पना यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों पर आधारित है तथा इसकी प्रकृति अनुगामी इंडक्टिव है। भिन्न भिन्न देशों के अलग अलग अनुभवों के फलस्वरूप बहुत से विद्वान इस संकल्पना के सांस्कृतिक स्थानांतरण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विश्व के जनसांख्यिकी संक्रमण के क्षेत्रीय इतिहास के विवेचन के पश्चात उसके प्रतिफल का संक्षिप्त मूल्यांकन आवश्यक है। जैसे जैसे जनसांख्यिकी संक्रमण का विकास होता है, प्राकृतिक परिवर्तन में महान परिवर्तन होता है। संक्रमण के आरंभ में यह निम्न है तथा संक्रमण की पूर्ण अवस्था में यह फिर से कम होना शुरू होता है तथा संक्रमण की पूर्णता पर यह निम्न स्तर पर आ जाता है। फलस्वरूप जनसंख्या के आयु संगठन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। संक्रमण की विस्फोटक अवस्था के दौरान देशों की जनसंख्या का आधार विशाल हो जाता है, जिसमें जवान आयु वर्ग के लोगों का प्राधान्य होता है। द्वितीय अवस्था के अंतिम चरण में जब उत्पादकता नियंत्रण शुरू होता है तो जनसंख्या के आयु संगठन में फिर से सुधार आता है, लेकिन इस समय वयस्क आयु वर्ग के लोगों की बहुतायत होती है। जैसे जैसे संक्रमण का विकास होता है, जीवन संभाव्यता की परिवर्तन होती है, मानव मूल्य बढ़ता है, रहन के स्तर में सुधार आता है तथा साधारण सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक क्रांति आती है।